ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश की आर्थिक अवस्था के विषय में जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। चिकित्सा शिक्षा के अध्ययन के लिए सातों प्रदेशों में विस्तार करने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड का कथन। और इसराइली सेना ने गजा क्षेत्र में रहे अस्पताल में किया हमला, हमले में 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था के विषय में जानकारी लेने के लिए आज प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड ने विभिन्न विषयगत मंत्रालयों, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायों के साथ चर्चा की। पिछले समय से अर्थतंत्र के बाह्य सूचकों में सामान्य सुधार दिखने के बावजूद आंतरिक सूचकों में आशातीत सुधार न हो सकने के कारण प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड ने संबंधित निकायों के साथ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकार ने भूकंप पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास निर्माण के लिए पहली किश्त 1 अरब 41 रूपये का निकासा किया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझांग और सलियान जिलों के लिए इस रकम का निकास किया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के लिए 50-50 करोड़ रूपये का निकासा किया गया है। ये जानकारी प्राधिकरण के प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड़का ने दी। उन्होंने बताया कि बझांग के लिए 25 करोड़, बाजुरा के लिए 14 करोड़ और सलियान के लिए 2 करोड़ रूपये का निकासा किया गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड ने कहा कि देश में चिकित्सा क्षेत्र में जनशक्ति उत्पादन और रोजगारी के बीच अंतर संबंध है। आज बालवाटार में चिकित्सा शिक्षा आयोग की 12वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों को नियमन और व्यवस्थापन करने के लिए गठित आयोग से निरंतर सुधारोन्मुख कार्य संपादन एवं दिशा निर्देश हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आगामी दिनों में भी देश के लिए आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन के लिए आयोग गंभीरतापूर्वक काम करेगा। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के अध्ययन और अध्यापन के लिए देश के सभी प्रदेशों में विस्तार करने और आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य को सेवा सरल एवं सहज रूप से प्रदान करने के लिए सही वातावरण बनाने के लिए आवश्यक कानूनी, नीतिगत और संस्थागत सुधार करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ दर्ज रीट पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायाधीश कुमार चुणाल की एकल इजलास में इस मुकदमे की पेशी तय की गई थी, लेकिन समय अभाव के कारण इस पर बहस न किए जा सकने की सूची में दर्ज होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। 7 अक्टूबर के दिन इसराइल में हमास समूह द्वारा किए गए हमले में लापता हुए नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी की स्थिति अभी भी अज्ञात बनी हुई है। इसराइल के तेल अबिब स्थित नेपाली राजदूतावास द्वारा जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती ने कहा कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने और सम्मान के आधार पर ही नेपाली समाज को निरंतर आगे बढ़ रहा है। नेपाल संवाद पहल और यूनेस्को समेत 34 संघ संस्थाओं द्वारा ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार न करने, दूसरों पर जबरदस्ती प्रभुत्व कायम करने की कोशिश, स्रोत पर कब्जा कर इसका न्यायोचित वितरण न कर पाने और पर्यावरण का विनाश से द्वंद्व की स्थिति सृजित होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाल अधिकार की पूर्ण प्रत्याभूति दिलाने के हिसाब से काम करने का तीनों तहों की सरकार से आग्रह किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आयोग ने पाया है कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय महासंधि, नेपाल का संविधान, कानून द्वारा परिकल्पित बाल अधिकार के प्रावधानों को प्रत्यावित नहीं किया गया है। इसलिए तीनों तहों की सरकार से आयोग ने आग्रह किया है कि इस क्षेत्र में भी काम किया जाना जरूरी है। रुकुम पश्चिम में आज हुए अलग अलग सवारी दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह चौर जहारी से जिला मुख्यालय खलंगा जाने के दौरान जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से जीप चालक सहित 22 लोग घायल हुए हैं, जबकि चौर जहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 13 के 45 वर्षीय मस्त बहादुर ओली और सानी भेरी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के 17 महीने के बालक प्रतीक बूढ़ा की मौत हो गई। इसी तरह सानी भेरी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 हासीवांग की 65 वर्षीय कमला खड़का मगर की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई। इसी तरह कृपनदेही में ट्रक की टक्कर से हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक रहे माधव देवकोटा और उनके पीछे बैठी यादा क्षेत्र की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी गजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर कथित हवाई हमले के बाद अब इसराइल ने के टैंक भी वहां पहुंच गए हैं। बीबीसी ने सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को सत्यापित किया है। इन वीडियो में कुछ टैंक अस्पताल के करीब दिख रहे हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अस्पताल में अभी भी 700 से अधिक लोग मौजूद हैं। इनमें मेडिकल स्टाफ, मरीज और उनके परिजन शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इसराइल इंडोनेशियन हॉस्पिटल को बंद करना चाहता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इसराइल के कथित हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसराइली सेना ने हवाई हमले के आरोप पर कुछ नहीं कहा है। इसराइली उत्तरी गजा में रह रहे लोगों से कई बार कह चुका है कि उस इलाके को खाली करके दक्षिणी गजा चले जाएं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की आर्थिक अवस्था के विषय में जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। चिकित्सा शिक्षा के अध्ययन के लिए 7 प्रदेशों में विस्तार करने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। और इसराइली सेना ने गजा क्षेत्र में रहे अस्पताल में किया हमला, हमले में 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।